नमस्कार भारत, तारीख 15 मार्च, दिन शुक्रवार। मैं हूं मानसी दास। ब्रेक्सिट को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार, नहीं होगा दूसरा जनमत संग्रह।
एंड टू बी ऑनेस्ट, यूके में ब्रेक्सिट वो शब्द है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको सेकंड रेफरेंडम मिला नहीं, अभी उनको पता भी नहीं वेदर ब्रेक्सिट होगा या नहीं।
भीम आर्मी के संस्थापक से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी अहम है ये मुलाकात।
चंद्रशेखर ने जो अपनी दलित युवाओं में जो पैक बना लिए वेस्टर्न यूपी में, उससे मायावती को खतरा लग रहा है। उसने हालांकि कहा कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी प्रियंका गई उनको देखने, एक मैसेज की बात होती है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप के देश की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने के लिए आपातकाल शक्तियों के इस्तेमाल के आदेश को रद्द करने के समर्थन में मतदान किया है। रिपब्लिकन पार्टी के 12 सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के विरोध में अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया। वोट के कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि वो इस पर वीटो कर देंगे। वहीं प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के एक सहयोगी ने कहा है कि उनकी पार्टी वीटो को रद्द करने के लिए मतदान करवाएगी। वहीं सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करने वाले रिपब्लिकन सीनेटरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ट्रंप जब आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो रिपब्लिकन नेताओं ने ही अब उन पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह हो रहे ये मतदान बेहतरी का संकेत साबित हों। रिपब्लिकन बहादुरी दिखाकर या सिद्धांतों पर चलते हुए या फिर खीज में अब राष्ट्रपति ट्रंप पर लगाम लगा रहे हैं। रिपब्लिकन अब ये समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की हर बात को मानने के उल्टे नतीजे हो रहे हैं और ऐसा बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। इजरायली सेना का कहना है कि उसने गजा के भीतर चरमपंथियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। गजा के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई धमाके सुने हैं और आकाश में इजरायली लड़ाकू विमानों को देखा है। ये हमले गजा की ओर से तेल अवीव पर दागे गए 2 रॉकेटों के जवाब में किए जा रहे हैं। इन रॉकेटों से जमीन पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गजा पर नियंत्रण करने वाले हमास का कहना है कि उसने ये रॉकेट नहीं दागे हैं और वो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा। वहीं इजरायली सुरक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वो इसके लिए हमास को ही जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने कहा, गजा पट्टी की ओर से तेल अवीव पर 2 रॉकेट दागे गए हैं। गजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल में इजरायली नागरिकों पर सालों से रॉकेट दागे जा रहे हैं। अब हमास को हराने का समय आ गया है। इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमास को खत्म करने का वक्त अब आ गया है। अमेरिका के कनेक्टिकट प्रांत की सर्वोच्च अदालत ने साल 2012 में हुए सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल नरसंहार में मारे गए 3 बच्चों के परिवारों को हमले में इस्तेमाल हुई बंदूक के निर्माता के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की अनुमति दे दी है। अदालत का कहना है कि बंदूक निर्माता रेमिंगटन के खिलाफ प्रांत के ग्राहक कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अब ये मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। ब्रितानी सांसदों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का समय बढ़ाने के समर्थन में मतदान किया है। मंजूर किए गए प्रस्ताव के तहत अगर प्रधानमंत्री टेरेसा मे के समझौते को संसद मंजूर कर लेती है तो ब्रेग्जिट को 30 जून तक बढ़ा दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे और लंबी अवधि के लिए टाल दिया जाएगा। ब्रिटेन को 29 मार्च को यूरोपीय संघ से अलग होना है और इसकी समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को इसके समर्थन में मतदान करना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने 8 साल से गृह युद्ध झेल रहे सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए $8 अरब का फंड जुटाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह रकम जरूरत से $2 अरब कम है। सीरिया में बीते 8 सालों से गृह युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। और ब्राजील में 1 साल पहले मारी गई स्थानीय नेता और अश्वेत एलजीबीटी कार्यकर्ता मारियलो फ्रेंको की मौत की जांच के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। ब्रिटेन की संसद ने बहुमत से ब्रेक्सिट की प्रक्रिया को कुछ वक्त के लिए टालने के लिए यूरोपीय संघ से गुजारिश करने का समर्थन किया है। साथ ही अधिकतर सांसदों ने दूसरे जनमत संग्रह के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। फिलहाल ब्रिटेन को मार्च 29 तक यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन अब इसे 3 महीने तक टालने की बात पर सहमति बनी है। अब से थोड़ी देर पहले बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने बात की लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से और उनसे जाना कि कल संसद में क्या क्या हुआ।
एक्चुअली कल का दिन यूके के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एमपीज वोट करेंगे ब्रेक्सिट पीरियड को एक्सटेंशन करने के लिए, और कल वैसा ही हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज ने वोट किया कि ब्रेक्सिट पीरियड को एक्सटेंड या पोस्टपोन किया जाए बियॉन्ड द 29th of March। दूसरी बात पता है क्या हुई, ये तो थोड़ा शॉक था क्योंकि हमें लगा एमपीज इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी एमपीज ने सेकंड रेफरेंडम को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि यूके में सेकंड रेफरेंडम नहीं होगा जो ज्यादातर लोग चाहते थे। अब क्या होगा कि क्योंकि एमपीज ने एक्सटेंशन मांगा है, तो टेरेसा मे ने 19th of March उस दिन उन्होंने अपना थर्ड मीनिंगफुल वोट रखा है। अगर उन्होंने टेरेसा मे के मीनिंगफुल वोट को एक्सेप्ट किया ट्यूसडे को, देन ब्रेक्सिट पोस्टपोन होगा 29 मार्च से 30th June तक, मतलब कि फॉर 3 months। अगर उन्होंने टेरेसा मे का रिवाइज डील फिर से रिजेक्ट किया, फिर उसका ये मतलब होगा कि ब्रिटेन को लॉन्ग एक्सटेंशन अप टू 3 years का एक्सटेंशन मिल सकता है ईयू से। थर्सडे को ईयू समिट है ब्रसल्स में, तो टेरेसा मे फिर जाके ईयू से मिलेगी और उनको परमिशन मांगेगी ब्रेक्सिट एक्सटेंशन के लिए।
ये सब तो हुई तकनीकी बातें, लेकिन जो ब्रेक्सिट को लेकर अनिश्चितता थी, क्या आप कहा जा सकता है कि वो कुछ साफ हुई है?
एक्चुअली और ज्यादा कंफ्यूजन है। अब तो दो बातें पता चले हैं कि सेकंड रेफरेंडम नहीं होगा, और दूसरा कि अगर यूके 29th मार्च को ईयू से नहीं जाता तो हम कब निकलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, यूके में ब्रेक्सिट वो शब्द है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको सेकंड रेफरेंडम मिला नहीं, अभी उनको पता भी नहीं वेदर ब्रेक्सिट होगा या नहीं, और ब्रेक्सिट का जो इम्पैक्ट है, लोग उसके बारे में भी सोच के परेशान है।
ब्रेक्सिट को लेकर असमंजस की स्थिति जानकारी दे रही थी गगन सबरवाल।
कहां पहुंच पाया बिहार, कैसी है बिहार की राजनीति, क्या चाहता है बिहार का युवा, बिहार की नब्ज टटोलने पहुंच रही है बीबीसी हिंदी की टीम पटना। चर्चा में शामिल होंगे कई राजनेता और सवाल पूछ पाएंगे आप भी। इस बार बोलेगा बिहार। 15 मार्च को पटना के अधिवेशन भवन में 12 बजे दोपहर से।
अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का नेटवर्क 18 के वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी को दिया एक इंटरव्यू विवादों में है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए बीबीसी संवाददाता भूमिका राय की रिपोर्ट।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित गुरुवार को अचानक ही अपने एक बयान की वजह से विवादों में घिर गईं। नेटवर्क 18 के वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी को एक इंटरव्यू के दौरान 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित कुछ ऐसा कह गईं जिसकी वजह से बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा,
मनमोहन सिंह, यस आई एग्री विद यू, देयर वाजंट एज स्ट्रॉन्गर एज डिटरमिंड एज ही इज परहैप्स।
शीला दीक्षित कह रही थी, मनमोहन सिंह, हाँ मैं सहमत हूँ कि वो इतने मजबूत और दृढ़ संकल्पित नहीं थे जितने कि ये हैं, लेकिन फिर ये एहसास भी है कि ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं। इस संदर्भ में जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि पहले जरूरी ये है कि संदर्भ को समझा जाए। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने जो कुछ कहा था वो कुछ यूं था। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि श्रीमान मोदी आतंकवाद के संदर्भ में ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये किसी भी दूसरी चीज से कहीं अधिक चुनाव से प्रेरित नाटक है। शीला दीक्षित ने भले ही अपने बयान को लेकर ट्विटर पर सफाई दे दी, लेकिन उनका ये बयान राजनीतिक गलियारों में गूंज उठा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तो उन्हें शुक्रिया तक अदा कर दिया और उन्होंने लिखा, धन्यवाद शीला दीक्षित जी, राष्ट्र तो ये बात बहुत पहले से जानता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार नहीं थी। हमने कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से बात की तो उन्होंने कहा,
देखिए शीला दीक्षित जी ने खुद ने इस बात का खंडन किया है कि उनके स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, हफीज सईद जैसे कुख्यात आतंकी को इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट बनाने में हम कामयाब रहे, वही डिप्लोमेसी कामयाब रही जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पालन करते थे। यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक शख्स को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है और जो सत्य और तथ्य है उसको दबाया जाता है।
प्रियंका ने मोदी सरकार के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए।
एक प्रधानमंत्री बगैर न्योते के पाकिस्तान पहुंच जाए गलबैया करने, एक प्रधानमंत्री ISI को न्योता दे दे। आज इनके कुल कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी का ले लीजिए या खुद नरेंद्र मोदी जी का ले लीजिए, कारगिल युद्ध रहा हो, कॉफिन स्कैम रहा हो, टैक रहा हो, लाहौर बस यात्रा रही हो, फिर मौलाना मसूद अजहर को छोड़कर आने की बात हुई हो, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की विफल नीतियों की वजह से जो आतंकी हमले हमारे देश में बढ़े हैं।
हालांकि बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल इसे अलग नजर से देखते हैं।
देखिए, हम तो इस बात को पहले ही कह रहे थे कि मनमोहन सिंह एक तरीके से पूरे कमजोर प्रधानमंत्री थे और वो उसका कारण कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही रहे। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में आपको उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो गया कि मोदी जी बड़े मजबूत हैं, लेकिन जनता की जो आम जनता को उन्होंने देखा है उसको कांग्रेस पूरी तरह से डिनाई करने का प्रयास कर रही थी, उन्होंने उस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है।
इस संदर्भ में जब हमने वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई से बात की और इसका राजनीतिक परिणाम जानना चाहा तो उन्होंने कहा,
शीला दीक्षित कांग्रेस की एक बड़ी वरिष्ठ नेता है, उन्हें पता है कि वो क्या कह रही है और उसका क्या मतलब निकल सकता है। शीला दीक्षित को इस बात का भी पूरी तरीके से पता है कि मनमोहन सिंह किन हालात में देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कैसे ये तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को टैकल किया, जिसका इस बयान से कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो मध्यम वर्ग है कांग्रेस लेकर उसको वैसे भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है और उसमें शीला जी को ये आग में घी डालने वाला काम है।
एक और जहां वरिष्ठ पत्रकार इसे आग में घी डालने वाला बयान बता रहे हैं, वहीं बीजेपी और उसके नेताओं के ट्विटर अकाउंट देखकर तो यही लगता है मानो उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। भूमिका राय, BBC दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच बने गठबंधन से अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में उम्मीद जताई जा रही थी कि गठबंधन की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम के दौरान जो कुछ सामने आया है उसने गठबंधन की संभावनाओं को न सिर्फ खत्म किया है बल्कि गठबंधन के दलों और कांग्रेस पार्टी के बीच कटुता भी बढ़ाई है। जानकारों का कहना है कि ये घटनाक्रम प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है। सुनिए लखनऊ से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
बुधवार को सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की गिरफ्तारी और फिर तबीयत खराब होने पर मेरठ के अस्पताल में उनकी भर्ती अभी अखबारों की सुर्खियां बनी ही थी कि गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का अस्पताल पहुंचकर उन्हें देखने के फैसले ने राजनीतिक तापमान को एकाएक बढ़ा दिया। राजनीतिक प्रतिक्रिया उन दलों की ओर से आई जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बना रखा है। प्रतिक्रिया खुलकर नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप में आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती के साथ मुस्कुराते हुए अपनी एक तस्वीर इस कैप्शन के साथ ट्वीट की, आज एक मुलाकात महापरिवर्तन के लिए। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात और ट्वीट के पीछे BSP नेता मायावती की चंद्रशेखर और प्रियंका गांधी की मुलाकात की प्रतिक्रिया थी। यह अलग बात है कि प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर मना कर दिया था कि इसके राजनीतिक मायने न निकाले जाएं।
कोई ऐसी बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। मुझे ये इस लड़के की का जोश पसंद है, मुझे ये अच्छा लगा कि वो संघर्ष करता है, वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है।
भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की दलित समुदाय के बीच पैठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले करीब दो साल से जितनी बढ़ी है उसे बीएसपी और उसकी नेता मायावती के लिए खतरा बताया जा रहा है। हालांकि चंद्रशेखर की पार्टी राजनीति में अभी तक नहीं आई है और न ही हाल फिलहाल उसके आने की संभावना है। बावजूद इसके उनके समर्थन और विरोध की राजनीतिक स्तर पर काफी अहमियत समझी जा रही है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा इसके पीछे ये वजह बताती है।
चंद्रशेखर ने जो अपनी दलित युवाओं में जो पैठ बना ली है वेस्टर्न यूपी में, उससे मायावती को खतरा लग रहा है पॉलिटिकली। अगर वो जब उसने कहा था कि वो मेरी बुआ जी जैसी हैं, तो अगर ये रिस्पॉन्ड करती है और उसको बुढ़ी उम्र में रखती तो इन्हीं को बेनिफिट होता। उसने हालांकि कहा कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी प्रियंका गई उनको देखने। एक मैसेज की बात होती है। अच्छा, वही मायावती दलित नेता है, वो भी दलित नेता है, वो नहीं गई, उन्होंने उसके फेवर में एक बयान भी नहीं दिया जब वो जेल में था सवा साल।
अमिता वर्मा कहती हैं कि तात्कालिक रूप से भीम आर्मी अकेले ही बीएसपी को चुनौती देने की स्थिति में भले ही न हो या फिर उसका विकल्प बन पाने की स्थिति में न हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो इसमें सक्षम हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। इसकी वजह यह है कि बीएसपी में मायावती के बाद कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी और भीम आर्मी की जुगलबंदी एक दूसरे के लिए राजनीतिक तौर पर मददगार साबित हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लंबे समय से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार रियाज हाशमी कहते हैं कि चंद्रशेखर ने दलितों को काफी बेहतर तरीके से संगठित करने का काम किया है।
राजनीति में उतरेगा पेड़ कबीर, लेकिन अभी किसी पार्टी का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल फायदा भीम आर्मी की कोई निकालने की स्थिति में है, और यही खतरा उनको महसूस भी हो रहा है, और इसीलिए वो किसी ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भी परहेज कर रहे हैं। वो देखना ये चाह रहे हैं, दूसरे दलों का सहारा लेके एक ताकत उभर मन के उभरना चाह रहे हैं।
वहीं दो दिन पहले मायावती के बेहद करीबी रहे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नेत्राम के यहाँ छापे पड़ने की खबर के तत्काल बाद मायावती का अचानक ये ऐलान करना कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी, उसके सूत्र भी इस घटना के साथ जोड़े जा रहे हैं। अमिता वर्मा कहती हैं,
और दूसरे पता नहीं किस दबाव में जो मायावती ने कहा है कि मेरा कांग्रेस से कहीं समझौता नहीं होगा। उन्होंने अपनी पार्टी और अखिलेश की पार्टी का नुकसान किया है, बिकॉज दिस इज अ मैसेज फॉर मुस्लिम। अगर आप कांग्रेस से नहीं अलाई करोगे तो इसके मतलब आने वाले दिन में आप बीजेपी की तरफ जाओगे, तो इससे अखिलेश का ज्यादा नुकसान होगा। तो ये चुनाव अभी मुझे लग रहा है और टर्न्स लेगा, और ये होते होते बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाएगा।
बहरहाल अभी राजनीतिक बिसातें बिछनी शुरू ही हुई है, टिकट बंटने की प्रक्रिया भी शुरुआती दौर में है और नेताओं के पाले बदलने का सिलसिला भी। सपा और बसपा सहारनपुर में 25 मार्च को पहली संयुक्त रैली करने वाले हैं, तो प्रियंका गांधी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यक्रमों को कांग्रेस पार्टी में अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चुनाव की असली तस्वीर तभी सामने आएगी जब सभी दल उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज के गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 35 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। हादसा कल शाम करीब 7:30 बजे हुआ। पूरी जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर से, जो रात को हादसे की जगह पर मौजूद थे।
बता दूं कि ये सबसे अहम जगह है मुंबई की। एक तरफ आपको CST दिखाई देगा, दूसरी तरफ JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स है, उसको लग के ही टाइम्स ऑफ इंडिया के बिल्डिंग है, उसको लग के ही मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा ऑफिस है। ये पूरा हेरिटेज स्ट्रक्चर है। उसी बीच जब 7:30 बजे हमें JJ फ्लाईओवर आगे चला जाता है तो बहुत भीड़ होती है, और इसी भीड़ के ऊपर ये मलबा पूरा गिरा था। एक चश्मदीद वहां पे थे जो 5 मिनट बाद इस हादसे के वहां पे पहुंचे थे, हमने उनसे बात की है।
सब मलबा हट चुका था, ये मलबा गिरा गाड़ियों पे गिरा है, उसमें जो दबे हैं उसमें जो जख्मी हुए। पब्लिक जो यहाँ से आती है ना शाम में अंदर से जाती है, रोड से पब्लिक नहीं जाती क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक होता है इधर, इसीलिए ये जाल लगा हुआ है इधर, पब्लिक अंदर से जाती है। सुबह ये ब्रिज के ऊपर से बच्चे लोग बहुत जाते हैं, जो स्कूल लगी अंजुम इस्लाम हाई स्कूल है, और ये हादसा सुबह होता तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता मामला।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना इसमें बयान दिया है, हालांकि वो खुद वहां पे नहीं थे, जो मंत्री है विनोद तावड़े वो वहां पे आके गए और उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान भी आया है। ये अभी भी पता नहीं चल रहा है कि जिम्मेदारी किसके ऊपर दे, या मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ दे, या क्योंकि उनकी हद में ये पुल जाके उतरता है, या फिर रेलवे की तरफ इसकी उंगली उठनी चाहिए क्योंकि रेलवे स्टेशन से निकल के ये पुल बाहर आ जाता है। अहम बात इसमें यह है कि कुछ महीनों पहले मुंबई के एल्विंस्टन स्टेशन पर, जिसको अभी प्रभादेवी कहा जाता है, वहां पे एक नैरो ओवरब्रिज था जिस स्टैम्पेड हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक
पूरी मुंबई में जितने पुराने ब्रिज हैं सभी की समीक्षा करने का आदेश दिया गया था
और उसके बाद जो है इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था, समीक्षा हुई थी, और उसमें पता ये चला है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ये पुल ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रिपोर्ट आया था। और तब ऐसा होने के बावजूद अब आगे जाके इस पुल का एक स्लैब है वो गिर जाता है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो उसकी जानकारी करने के लिए ये बताया है कि हाई पावर कमेटी बिठाई जाएगी, और जो भी जिसने भी ऐसा रिपोर्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट दिया है जो अब जाके गलत साबित हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है।
मुंबई पुल हादसे पर जानकारी दे रहे थे मयूरेश कुन्नूर। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले जानते हैं अखबारों में आज क्या सुर्खियां हैं। दिलनवाज, आप अखबारों के साथ स्टूडियो में हैं और जाहिर है मुंबई पुल हादसे की तस्वीरें हर अखबारों में होंगी।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर मुंबई पुल हादसे की तस्वीर है, मरने वालों की तादाद बताई गई है और बचाव कार्य दिखाया गया है। पंजाब केसरी बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, मुंबई में ब्रिज गिरा, 5 मरे, 40 घायल, 25 अभी भी दबे, ऐसा कहा गया है। हालांकि ये खबर देर रात लिखी गई होगी तो अब तक चीज़ें वहां और साफ हो गई होंगी। तस्वीर प्रकाशित की गई है जिसमें पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त दिख रहा है, और ऐसी ही एक तस्वीर द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है। बाकी अखबारों में भी यह खबर सबसे प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इसके अलावा एक और खबर जो लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है मसूद अजहर से जुड़ी हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, चाइना ड्रॉज आयर ऑफ अदर यूएनएससी मेंबर्स फॉर सेविंग अजहर, यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाकी देश हैं वो चीन को लेकर खफा हैं, जो चीन का रुख था इस पर। और अन्य अखबारों ने इस पर अलग शीर्षक लगाया है, एक अखबार ने लिखा है चीन की दीवार को पार करेंगे अन्य देश। मेरे हाथ में आज का द हिंदू है और इसमें एक तस्वीर प्रकाशित हुई है श्रीनगर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता अपना सर छुपाए हुए और अखबार लिखता है कि कैमरे से शर्मा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीर आज के द हिंदू में है। शिलोंग टाइम्स की एडिटर जिन पर जो है माफ़ कीजिएगा जुर्माना लगाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया है और अब सुप्रीम कोर्ट में उनके मुकदमे की सुनवाई होगी। रफाल विमान से जुड़ी हुई खबरें भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। इसकी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और इन पर सुनवाई होनी है, तो अब कहा गया है कि इससे जुड़े जो दस्तावेज हैं उनके मामले पर पहले सुनवाई पूरी होगी और आगे की जांच जो है बाद में चलेगी। इसी पर हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, रफाल प्लीज सुप्रीम कोर्ट टू फर्स्ट सेटल राव ओवर डॉक्यूमेंट्स, यानी दस्तावेजों को लेकर जो विवाद है उसे सबसे पहले जो है सुलझाया जाएगा। दैनिक जागरण मेरे हाथ में है, विंग कमांडर अभिनंदन की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है, और इससे जुड़ी हुई एक खबर नहीं है लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा, विंग कमांडर अभिनंदन की चुनाव के दौरान तस्वीरों का सोशल मीडिया पर इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी चुनाव आयोग कदम उठा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बातचीत हुई है और इस पर इससे जुड़ी खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। द इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है, पिलग्रिम कॉरिडोर इंडिया पाकिस्तान टॉकिंग पुट डिफरेंसेस ऑन टेबल, यानी जो आपसी विवाद हैं उन्हें किनारे रख
मतभेद भुलाकर
बातचीत शुरू
पर बातचीत शुरू। जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद दिलनवाज पाशा। और अब वक्त है एक खास रिपोर्ट का। श्रोताओं, बीबीसी हर साल महिलाओं पर केंद्रित कहानियों की सीरीज 100 विमेन पेश करता है। इसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि महिलाओं की कहानियां और उनकी आवाज़ हम आप तक पहुंचाएं। इसी के तहत इस बार हम डिजिटल ट्रैश पिट, यानी एक तरह का कूड़ेदान लेकर बिहार और राजस्थान में महिलाओं के पास गए। इन महिलाओं से हमने सवाल किया कि वो अपनी ज़िंदगी की किस एक चीज़ को कूड़ेदान में फेंकना चाहती हैं। जो जवाब मिले वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल ट्रैश पिन की दूसरी कड़ी में आज सुनिए राघोपुर की औरतों की आज़ादी की आवाज़।
लालू प्रसाद यादव परिवार का सियासी गढ़ राघोपुर बिहार का आइलैंड कहलाता है। साल के 6 महीने राघोपुर जाने का एकमात्र रास्ता पीपा पुल है, बाकी वक्त में सहारा सिर्फ नाव है। हमने राघोपुर की औरतों से पूछा किस एक चीज से वो चाहती हैं मुक्ति।
मेरी बेटी कपड़ा जींस पहनता है, मेरे अच्छा लगता है, आप लोग का क्यों बुरा लगता है। खाना बनाना हमको पसंद नहीं है, हम खाना बनाते हैं तो हमको स्कूल के लेट हो जाता है तो सर बोलते हैं, इसलिए हमें पढ़ने में आती है। मेरा लंबी बाल नहीं अच्छा लगते हैं, कंघी लगाना पड़ता है, तेल लगाने पड़ता है और जूड़ा बनाने पड़ता है।
खेत में जाने से यही दिक्कत होता है कि अगर आस पास आदमी हो उस देख लेता है हम, इसीलिए कहते हैं कि मम्मी पापा को कि शौचालय बना दिया जाए।
स्कूल पढ़ने ला निकलते हैं तो लड़का सब गंदा गंदा गाना गाने लगता है, उसीलिए पापा मम्मी कहते हैं कि तुम ना ही जाओ पढ़ने। हमें जाति से मुक्ति चाहिए क्योंकि दूसरे फ्रेंड हमें जात से होते हैं तो उनको यहाँ खाना खा लिए तो बोले कि दूसरे यहाँ खाना खा लियो, जाति दूसरा चाहिए।
जो पति पत्नी को मारते हैं उससे हमको छुटकारा चाहिए और किसी नहीं।
शराब बंदी तो हो गया था लेकिन अभी भी मिलता है, शराब पीने से हमारे अंकल और पापा घायल हो गया, इसीलिए शराब से हमें मुक्ति चाहिए।
लड़की लड़की
हमको गुस्सा आता था इतना बच्चा पैदा करने में, लड़का के चलते लड़की का संख्या ज़्यादा बढ़ गया।
राघोपुर की औरतों के बारे में प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी कहते हैं,
वो केवल बाल और कपड़े की बात नहीं करती हैं, उस दास्ता को उखाड़ फेंकने की बात करती हैं जिस दास्ता में वो सदियों से हैं। हमको उन उस दास्ता से स्वतंत्रता चाहिए जो दास्ता हम पर थोपी गई है पुरुष वर्ग के द्वारा, पेट्रियार्की के द्वारा, और इसका संकेत स्पष्ट मिल रहा है और मैं समझता हूँ ये सकारात्मक है, सामाजिक बदलाव है और ये जनतांत्रिक विकास है।
ये थी राघोपुर के औरतों की आजादी की आवाज और अब वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाने के बाद साफ कर दिया है कि उन्होंने विश्व कप के लिए अंतिम 11 खिलाड़ी लगभग तय कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पांचवें और निर्णायक मुकाबले में भारत को 35 रनों से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले विराट कोहली ने कहा था कि विश्व कप के लिए जाने वाली टीम में दो जगहों को भरना बाकी है, लेकिन सीरीज के बाद उनका कहना था कि अब सिर्फ एक स्थान के बारे में चर्चा की जानी है।
एज अ साइड कॉम्बिनेशन वाइज जी हम काफी सॉर्टेड हैं, कंडीशन बेस्ड एक या मैक्सिमम एक ही चेंज वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा कंडीशन बेस्ड, बट उसके अलावा 11 जो हमें खिलाने हैं हम बिल्कुल क्लियर हैं उसके बारे में। और देखिए आप अगर सेम 11 भी खिलाएंगे और अगर परफॉर्मेंस ना हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप प्लेयर गलत ले आए। हमको पता है हमको कहाँ जाना है वर्ल्ड कप में एज अ कॉम्बिनेशन। 11 जो है हमारी काफ़ी क्लियर है अपने दिमाग में, जस्ट दैट हमको अच्छे डिसीजंस लेने होंगे प्रेशर सिचुएशन में।
ICC विश्व कप 2019 का आगाज 30 मई को होगा। इस बार मेजबानी का जिम्मा इंग्लैंड और वेल्स पर है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और यौन शोषण के मामले में चार्जशीट फाइल की गई है। शमी ने पिछले दिनों भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। वो टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन के दम पर वनडे टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए थे और उनके प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि वो विश्व कप के लिए इंग्लैंड जा सकते हैं। विश्व कप से पहले उन्हें IPL में खेलना है, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने से IPL और उसके बाद विश्व कप में उनके खेलने पर सवाल उठ गए हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप के देश की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने के लिए आपातकाल शक्तियों के इस्तेमाल के आदेश को रद्द करने के समर्थन में मतदान किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने गजा के भीतर चरमपंथियों के ठिकाने पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। गजा के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई धमाके सुने हैं और आकाश में इजरायली लड़ाकू विमानों को देखा है। अमेरिका के कनेक्टिकट प्रांत की सर्वोच्च अदालत ने साल 2012 में हुए सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल नरसंहार में मारे गए 3 बच्चों के परिवारों को हमले में इस्तेमाल हुई बंदूक के निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। ब्रितानी सांसदों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का समय बढ़ाने के समर्थन में मतदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने 8 साल से गृह युद्ध झेल रहे सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए $8 अरब का फंड जुटाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।